हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 24, 25 और 26। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रम् सपुटेशयानम् बालम् मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहोणा द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादया येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वरे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्धावनम् रम्या काचिदुपासन व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पोमर्थो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्त शाक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं कुरुतु वाचालं पंगु लंघयते किरं, यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनदारिणं। परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान। यह सुखदेव गोस्वामी योगी जन किस प्रकार से अपने प्राणों को त्याग कर भगवान के निराकार जो निराकार की उपासना करते हैं वो किस तरह से ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं उसके विषय में बताते हैं। और पहले उन्होंने बताया यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है और भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देता है। लेकिन यदि उसके हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं बाकी रह जाती हैं और भौतिक भोगों की इच्छा होती है तो जैसे कि सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा या फिर स्वर्ग लोक में या फिर सिद्धियां प्राप्त करने की और या फिर ऐसे जीवों के साथ अपनी यात्रा करने की अंतरिक्ष में तो या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा होती है तो उसे भौतिकता में ढले मन के साथ इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमें बताया योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनांतरात्मना। जो आध्यात्मिकवादी जो होते हैं उनका संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है और वो अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर क्या कर सकते हैं भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध्य रूप से विचरण कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे ना उदाहरण पढ़े नारद मुनि का दुर्वासा मुनि का। लेकिन जो सकाम कर्मी होते हैं निपट भौतिकतावादी होते हैं जो अभी तक भौतिक शरीर ही खुद को समझते हैं आध्यात्मिक में यानी जब तक उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक वो इस तरह से मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते। उसके बाद आज सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब योगी उच्च लोकों पे जाता है तो उसके रास्ते में किस तरह से क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे सफर कैसे तय करता है अपना और कैसे कैसे गुजर के वो अपने गंतव्य तक पहुंचता है उसके विषय में बताते हैं। वे कहते हैं श्लोक नंबर 24 में वैश्वानरं याति विहा यसागत सुषुम्णया ब्रह्मपथि न शोचिषा विधूत कर्कोत हरि रुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशेषुमानम्। वैश्वानरं याति विहायसा गता। विहायसा मतलब आकाश का जो मार्ग है आकाश गंगा से उसको पार करता है और फिर वो कहाँ पर पहुंचता है वैश्वानरम यानी अग्निदेव। अग्निदेव का जो लोक है वहां पर उनके ग्रह में आता है और फिर क्या होता है सुषुम्नया ब्रह्मपथे शोचिषा। वो कौन पहुंचता है जो ब्रह्म पथे होता है यानी ब्रह्म लोक तक पहुंचने के लिए जो यात्रा कर रहा होता है वो पहले अग्निदेव के लोक में आता है और वहां पर आने पर क्या होता है, विदूत कल्पो तहारी रुदस्तात। विदूत कल्को यानी धूल मलिनता जो उसके विचारों में है या उसके हृदय में, वो सारे कलमसों से परिशुद्ध हो जाता है। विदूत कल्को यानी सारे उसकी अपराध हृदय से समाप्त हो जाते हैं। कोई अपराध क्या है, कुछ और प्राप्त करने की इच्छा, वो समाप्त हो जाती है। फिर क्या होता है, तब प्रयाति चक्रम निपशेषुमारम। प्रयाति चक्रम यानी कि फिर वो पहुंचता है कि कहां पर, निपशेषुमारम, एक शेषुमार चक्र है, वहां तक पहुंचता है, क्योंकि अब उसके सारे अपराध समाप्त हो गए हैं। अब वो भगवान के साथ तदात्म्य होने के लिए जा रहा है, तो वो शिशुमार चक्र में जाता है। श्री प्रभुपाद जी सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है। ठीक है, ये जो ध्रुव तारा है, ध्रुव को भगवान ने जो लोक दिया था, उसके आसपास का जो भी मंडल है उसको शिशुमार चक्र बोलते हैं। जहां पर भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है, यहाँ पर ही क्षीरोदक्षाय विष्णु, जैसे ब्रह्मांड का जब निर्माण होता है तो वहां पर क्षीरोदक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, वो कौन सा मंडल है, सुषुमार चक्र। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा से ऊपर होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। जब वो ब्रह्मलोक तक, यहाँ ऊपर हो गया ना ब्रह्मलोक, और फिर आगे जाता है, तो वहां जाते समय सर्वप्रथम वो कहाँ पर पहुंचेगा, वैश्वानरम याति विह यसागता। वैश्वानर लोक में पहुंचेगा जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये वैश्वानर का यहाँ का देवता जो क्या करता है, अग्नि पर नियंत्रण करता है। इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर फिर उसकी सारी क्या हो जाती है, विदूत कल्कोत हरे रुदात्मता, हरे रुदस्तात, भगवान के अंदर वो तदात्म्य होना चाहे, होने के लिए पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब वो ब्रह्मलोक जाएगा तो मार्ग में आकाश गंगा से होते हुए फिर आगे वो वैश्वानरम जाएगा। तो ये रास्ता बता रहे, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में हर एक लोक के विषय में डिटेल से बताया गया। आजकल साइंसदान जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कौन सा ग्रह, लेकिन यहाँ पर भगवान सीधा सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि यहाँ पर जाने के लिए आपको साधना करनी होगी। यांत्रिक जो ये मतलब विवान है या फिर इनसे आप उन जगहों पे नहीं जा सकते हो, अन्य लोकों पे नहीं जा सकते हो। और उसके बाद क्या होता है वो आगे बताते हैं, तत्विश्वनाभिम त्वतिवर्त्य विष्णु अणीयसा वीरजेनात् मनैका नमस्कृतं ब्रह्म वेदा उपैति कल्पायुषो यत् विभुधारमन्ते। तद् विश्वनाभिम यानी विराट रूप की नाभि को, तो लेकिन अतिवर्य पार कर विष्णु अड़ियसा यानी भगवान विष्णु की योग सिद्धि के कारण विरजेन शुद्ध की गई आत्मना यानी जीव के द्वारा। अब जिस सुषुमार चक्र तक वो पहुंचा है वो उसके विषय में बोलते हैं तद विश्वनाभिम, कि वो क्या है, वास्तव में जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उसकी नाभि है, जहां से के ब्रह्मा जी या सारे लोकों का प्राकट्य हुआ है। तो वो भगवान विष्णु की नाभि है और वहां पर कौन जा सकता है, केवल जो शुद्ध जीव होते हैं, वरजेन यानी जो वरजेन आत्मना मतलब जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, जो पवित्र योगी जन होते हैं वो ही वहां तक आ सकते हैं। नमस्कृतम ब्रह्म विदामु पैति, आगे कहते हैं कि ब्रह्म विदाम का मतलब होता है आध्यात्म पथ पर स्थिर रहने वाले, जो आध्यात्मिक स्थिति पर पहुंच चुके हैं केवल वही वो वहां पर जाते हैं। और क्या कल्पायुषो यद् विभुदार, कल्प आयु, कल्प एक कल्प के समान उनकी आयु होती है वहां पर। कितना एक कल्प? 4,30,00,000 सौर वर्ष, यानी देवताओं के 4,30,00,000,000 वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, और यहाँ पर उनकी आयु इतनी होती है। यद् विभुदा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति रमनते, वो इतना समय तक वहां पर भोग करते हैं। अनुवाद देखिए, यह सुषुम्नार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है, और यह विष्णु यानी गर्भोदशा विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस सुषुम्नार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक यानी महर लोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4,30,00,000 सौर वर्ष की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अभी योगी जैसे सर्वप्रथम कहाँ पर पहुंचा? अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर में, और यहाँ से सारे कल्मशों से शुद्ध होता है, तब वो भगवान हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर सुषुम्नार चक्र तक पहुंचता है। सुषुम्नार चक्र कौन सा है? गर्भदक्षा विष्णु की नाभि है, और वहां पर केवल योगी जन ही आ सकते हैं, और उसको पार कर ऐसे लोक यानी महर लोक को प्राप्त करता है, जहां पर भृगु जी से जैसे परिशुद्ध हुए हो चुके महर्षि कितने टाइम तक रहते हैं? कल्प तक रहते हैं, और 100 वर्ष की उनकी आयु होती है। और ये लोग उन संतों के द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म को प्राप्त होते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? आगे कहते हैं, अथो अनंतस्य मोखानलीना दंधयमानम सनिरीक्ष विश्वम निर्याति सिद्धेश वरयुष्ट दिश्यम यद्वै परार्ध्यम तदुपारमेष्ठ्यम अथो अनंतस्य मुखा नलीना दंधयमानम सनिरीक्ष विश्वम निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टदीष्टम यद्वै पराध्यम तदुपारमेष्ठ्यम अथो अनंतस्य यानी ईश्वर के विश्राम करने वाले अवतार अनंत, उसके पश्चात अनंत जब 4,30,00,000 वर्ष खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, नहीं मतलब उनकी आयु समाप्त हो जाती है ना, वो तो फिर क्या होता है? एक प्रलय होता है। कल्प समाप्त होता है, एक प्रलय होता है, फिर वो क्या करते हैं? अनंत के मुख से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। जब समय समाप्त हो गया, दंधयमानम सनिरीक्ष विश्वम, सनिरीक्ष विश्वम वो ब्रह्मांड को जलता हुआ भस्मीभूत होता हुआ देखते हैं, और देख रहे होते हैं वहां पर निर्याति, फिर वो क्या करता है? आगे बाहर जाता है। किसके द्वारा जाता है? सिद्धेश्वर युष्ट दिश्यम यानी जो शुद्ध आत्माओं द्वारा जो प्रयुक्त वायु यान होते हैं, उनके अपने वो होते हैं विमान इत्यादि, उनके द्वारा वो आगे निकलता है। यद्वये परार्ध्यम तदुपार में यद्वये परायणम, अब वो वहां पर सत्यलोक में पहुंचते हैं, तो सत्यलोक में जीव की आयु कितनी है? द्वये परार्धी, द्वये परार्धी परार्ध्यम का मतलब होता है 1,56,80,00,000,000 इतने 100 वर्षों की उनकी आयु होती है। तो ये बताए यद्वै परार्ध्यम तदुपारमेष्ठ्यम, तो सत्यलोक में यानी पारमेष्ठ्यम यानी जहां पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं वहां तक कि वहां तक वो आते हैं और वहां पर उनकी आयु कितनी बन जाती है, 1,54,80,000, यानी इसको बोलते हैं परार्ध, 2 परार्ध की हो जाती है। ठीक है, आगे अनुवाद देखिए। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात 1,54,80,000 आंकी जाती है। अभी ये सब अलग अलग लोक हैं और वहां पर जीवन की अलग अलग समय है, जीव कितने अरसे तक वहां पर रहते हैं, तो इनके ऊपर हम संदेह नहीं कर सकते क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने जो बताया है वही सत्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, कि ये स्पॉटलेस है, अमल है, इसके अंदर कोई केतव नहीं है, इसके अंदर कोई मल नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध और ना पवित्र ज्ञान है इसके अंदर जो बताया। और जितने बड़े बड़े जितने बड़े बड़े भक्त हैं और जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, जैसे रामानुज आचार्य, वल्लभ आचार्य, श्रीधर स्वामी, उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण के एक एक शब्द को स्वीकार किया है। तो बुद्धिमत्ता यही है कि हम इन सब बातों को स्वीकार कर लें। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें संशय करते हैं, संदेह करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे शास्त्रों पर संदेह करता है, उन पर यकीन नहीं करता है, उनको न स सिद्धि अब आप नोती न सुखम न परम गति, न उनको कभी सिद्धि प्राप्त होगी, न सुख होगा और न ही परम गति प्राप्त होगी। इसलिए हमें इन सब बातों को एज इट इज स्वीकार करना है कि ऐसा है तो ऐसा होगा। अनुवाद देखिए। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से, जो ब्रह्मांड का नीचा अनंत जो शेषनाग है उसके मुख से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समय समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं के द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध यानी 1,54,80,000 की होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर संकेत किया गया है कि महरलोक जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4,30,00,000 अंकी जाती है, वहां के निवासियों के पास वायु यान होते हैं, यानी कि वहां के लोग जो होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया ना सिद्धेश्वर युष्ट देश्याम, तो उनके पास वायुयान होते हैं, हवा से चलने वाले विमान होते हैं, जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक में पहुंच जाते हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवतम में हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत प्राप्त होते हैं जो हमसे बहुत ही दूर हैं और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। तो आजकल के जो यहाँ पर यान है, जो भी बनाए गए हैं ड्रोन या फिर जो भी एरोप्लेन्स हैं, उसमें उनके अंदर चढ़ के नहीं पहुंच सकते, वायु यान होते हैं अलग से, उनके अंदर बैठकर हम पहुंच सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के इन कथनों को स्वीकार श्रीधर स्वामी, रामानुज आचार्य तथा वल्लभ आचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो श्रीमद् भागवतम को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं, अतएव कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के कथनों की अवहेलना नहीं कर सकता, जबकि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, जो समस्त वैदिक वांग्मय के संकलन करता अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पदजनों का अनुसरण कर रहे। तो कोई ऐसे राग खड़े हुए किसी से हम नहीं सुन रहे, साक्षात सुखदेव गोस्वामी जो कि भगवान की शक्ति आवेश अवतार वेद व्यास जी के सुपुत्र हैं और अपने पिताजी के ही पदजनों का अनुसरण करते हुए हम बता रहे हैं, तो समझो ये श्रीमद् भागवतम भगवान की तरह पवित्र है। जितने भगवान के अंदर विश्वास होना चाहिए ना, उतना श्रीमद् भागवतम महापुराण के शब्दों के अंदर ये वांग्मय संकलन करता, ये वांग्मय मूर्ति है भगवान की। तो भगवान की सृष्टि में ऐसे अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी संसार में भी आश्चर्यजनक वस्तुएं, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम रहते जाते आए हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकता विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये भौतिकतावादी जितने भी प्रमाण हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि किस पर होना चाहिए? शुद्ध आचार्यों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा, जो हमें बताया जाता है शास्त्रों का, शास्त्रों के विषय में जो हम सुनते हैं उनके ऊपर हमें ना विश्वास करना चाहिए। वैज्ञानिक लोग के जो उनके मेंटल स्पेकुलेशंस हैं उनके ऊपर हमें नहीं आना ध्यान करना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान की सृष्टि में ऐसे अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा इन तक पहुंचने में असक्षम रहते हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकतावादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही केवल स्वीकार कर लेना पड़ता है, क्योंकि वह ना तो आधुनिक विज्ञान की ना ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता। अभी आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है कि H2O से पानी बनता है, ठीक है, उसने बना के ऐसा बना के देखा, या फिर ना वो भले बोले कि भाई सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से इतना दूर है, तो जो भी बना हुआ लिखा हुआ है हमको उसको एज इट इज स्वीकार करना है। हम जाकर कोई है ना सेंटीमीटर लेकर या फिर कुछ इंच टेप लेकर सूर्य की साइज तो नहीं नापेंगे या इतना डिस्टेंस है ये तो नहीं नापेंगे, जो साइंस की किताब में लिखा हुआ है उसको हमें एज इट इज स्वीकार करना पड़ता है ना। उसी तरह से जो भगवान की किताब में लिखा हुआ है उसे एज इट इज स्वीकार करना है, क्योंकि जांच नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्योंकि वह ना तो आधुनिक विज्ञान की ना ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वह उनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे, किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उससे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित हैं। क्यों इस वैदिक वांग्मय को क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि जो शुद्ध आचार्य हैं, जो आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच गए हैं, बहुत विद्वान हैं, श्रद्धालु हैं, उनके द्वारा हमें ये वैदिक साहित्य प्राप्त हुआ है। तो फिर आधुनिक विज्ञान तो ऐसे बद्ध जीव हैं, जो आधुनिक विज्ञानी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कैसे हैं? जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा, वो अभी तक देहात्म बुद्धि में है, इंद्रियों में तो कितने सारे दोष हैं। तो एक दफा बोलते हैं कि भाई ये पृथ्वी जो है वो स्क्वायर है, कभी बोलते थे बहुत पहले, और उसके बाद बोला नहीं पृथ्वी जो है वो ना ये गोल है, और बाद में ये पृथ्वी ओवल है, मतलब कभी कौन सा बताएंगे कभी कौन सा बताएंगे, तो उनके अंदर तो बहुत सारी त्रुटियां हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, आज से करोड़ साल पहले जो लिखा हुआ था वही अभी तक चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनोरिक्षा। ये आज से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो सबसे पहले सूर्य देव को बताया, वही चीज उसने अपने बेटे अक्षिवाको को बताया और वही चीज मनु ने बताया और मनु से सारे लोगों तक पहुंचा। तो अब भी वही परंपरा टूटी, मैं वही बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी बातें अभी बताऊंगा, वही एज इट इज वस्तु, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो उसमें कभी चेंज नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो परम सत्य है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अत्येव, अच्छा यही होगा कि श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचनों को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर में स्वीकार किया है। तो हमें श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक शब्द के ऊपर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए और इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे, वैसे वैसे हृदय के अंदर पवित्रता प्राप्त होगी, भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। वो कितना समझ में आ रहा है वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल श्रवण ही जीवन है। ये हम जो श्रवण कर रहे हैं ना, वो भगवान की असीम कृपा है, अनुकंपा है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो श्रोतागण होते हैं यदि वो प्रेम और आदर के साथ श्रवण करते हैं तो उनके जीवन परिवर्तित होते हैं, और वो तभी संभव है जब वक्ता इस योग्य हो कि वो प्रेम और आदर उसको दे सके। वो यदि अपनी सेवा अच्छे से करेगा, साधना अच्छे से करेगा, तो श्रोतागण के हृदय में भी उनके प्रतिभाव उत्पन्न होगा। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, ताकि आप सबका कल्याण हो। हरे कृष्ण हरे बोल। ग्रंथ राशिमद् भागवतम महापुराण की।